आज के इस सवेरे की प्रार्थना में हम श्रीमद् भागवत से तीसरे स्कंद से 31वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। जीवों के गतियों के विषय में भगवान कपिल देव का उपदेश, श्लोक क्रमांक 15।
यन्माययोरु गुणकर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पतिचरम तदस्विश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महदनुग्रहम अंतरेण।
इन श्लोकों में जो गर्भ अवस्था में गर्भाशय के अंदर जीव है वो प्रार्थना करता है। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मृत्यु के चक्र बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है। ये बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति का कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति पुनः किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? ये सब कौन कह रहा है? गर्भ के अंदर जो जीव है, जो अंधकार में पड़ा है, जो मल मूत्र और हर प्रकार का द्रव्य जो शरीर से निकलता है उसमें लोटपोट हो रहा है, उसमें तैर रहा है, उसी में उसको ऊपर नीचे होना पड़ता है। अंधकार है, माता की जठराग्नि का आँच उसको सहना पड़ता है, माता के द्वारा खाए पिए गए वस्तुओं का कष्ट उसे सहना पड़ता है। पर मूल समझने की बात यह है कि जीव यहाँ पर चेतन है, यानी कि कॉन्शियस है, सब कुछ भावनाओं का जो अनुभव है वो कर रहा है। और लोग सोचते हैं कि जीव को चेतना नहीं होती है, बहुत देर के बाद में आती है, तो इसीलिए लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने जीवन के निजी हेतुओं को पूर्ण करने के लिए ये गर्भपात करने का निर्णय लिया। और 1964 में भारत सरकार ने गर्भपात का कायदा पास कर दिया। उसके पहले भारत भर वर्ष में जब भी गर्भपात हुआ करते थे तो गर्भपात किए हुए जिन्होंने किया है उस परिवार को हद पार करते थे, गांव के बाहर निषिद्ध मानते थे, उनको क्या कहते हैं, बायकॉट करते थे। ऐसी हमारी संस्कृति थी कि बालक जो गर्भ में है वो असहाय होता है, उसके पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता है, कोई यंत्रणा नहीं होती है, उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं होती है, वो असहाय होता है। और ऐसे अवस्था में अपने ही जीव को अपनी ही माता हत्या करती है। तब हमें याद आता है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में माताएं अपने बालक की हत्या करेंगी। तो उनको लगता है गर्भपात में बालक की हत्या करना तो हत्या ही नहीं है, बाहर आने के बाद करेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जीव है, चेतना है, जन्म मृत्यु की यातना है, वहाँ किसी भी जीव को अपने अधिकार से मृत्यु का दंड देना किसी को अधिकार नहीं दिया है उसका। और इन सब बातों में हमें ये बात ध्यान में नहीं आती है कि अभी मालिन गांव में पहाड़ नीचे आया और बहुत सारे सैकड़ों लोग मर गए। कितने दिन से पेपर में ये खबर आ रही है, पुणे हाईवे में एक्सीडेंट होता है, 10 लोग मर जाते हैं, पेपर में खबर आती है। लेकिन 1964 के बाद में जो कायदा किया गया गर्भपात का, उसके बाद में आज के तारीख में भारत में 35,000 बालकों का गर्भपात रोज किया जाता है। एवरी सिंगल डे 35,000 चिल्ड्रेन आर किल्ड इन द वूम्ब एवरी सिंगल डे इन इंडिया। कहीं पेपर में खबर नहीं आती है, कहीं किसी माताओं का, पिताओं का और डॉक्टरों के क्रूरता की बात छपके नहीं आती है, कोई सोचता नहीं इसके बारे में। बालक पूछता है, अंदर से पूछता होगा, कोई सोचता नहीं जब मैं गर्भपात का निर्णय लेता हूँ, मेरी पत्नी को पूछकर, मेरी माँ को पूछकर और परिवार के लोगों को पूछकर। तो हमारे अपने अपने कारण होते हैं कि धन नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, अभी और शक्ति नहीं है बालकों को बड़ा करने की, हमारे पास करियर है हमारा, और बहुत सारी समस्याएं हैं किसी को अत्याचार हुआ है किसी के ऊपर, किसी के बालक को पेट के अंदर ही जन्म से ही कोई ऐसी रोग या ऐसा कोई चीज़ अंदर है जिसके द्वारा वो जी नहीं सकता है, ऐसे कई कारण हैं गर्भपात करने के। लेकिन कोई भी ये सोचता नहीं कि उस गर्भ की इच्छा क्या है, गर्भ क्या चाहता है। कोई पूछा है किसी ने? जब माता पिता अपने बुद्धि से सोचते हैं कि हम कितना बुद्धिमानी का निर्णय ले रहे हैं, कितना सोच समझ के हम अपने जीवन का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस बालक को नहीं पूछते कि आप क्या चाहते हो। और सरल सा विचार है कि बालक कभी भी नहीं बोलेगा मुझे मारो, मम्मी आप अपना करियर बनाओ, मुझे नौछावर कर दो, ऐसे कोई बालक नहीं कहेगा। हर बालक जो है वो जीवन चाहता है जैसे हम चाहते हैं, और हम भी अपना जीवन का उद्देश्य और अपने करियर और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माता ने हमका गर्भपात नहीं किया था। मैं सऊदी अरब में 2.5 साल था, मुझे गर्व है इस बात पर बताने के लिए कि सऊदी अरब में गवर्नमेंट के रूप से एबॉर्शन मना है। फ्रॉम दी नेशनल गवर्नमेंट लॉ नोबडी कैन परफॉर्म एबॉर्शंस इन सऊदी अरेबिया होल कंट्री, इतनी विशाल देश है वो, क्योंकि उनके धर्म में ये सिद्धांत है कि गर्भपात नहीं कर सकते। क्रिश्चियन धर्म में भी ये सिद्धांत दिया गया है कि गर्भपात नहीं कर सकते। हमारे कॉलेज में हमारी बहुत क्लासमेट्स थी लड़कियाँ जो क्रिश्चियन थी, और उनको जब ये गर्भपात के ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे धर्म के ये खिलाफ है, और कायदा से उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सका। ये हमारी संस्कृति है, जो सबसे असहाय होता है उसको सबसे अधिक सुरक्षा मिलती है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। कोई धमकी आती है फ़ोन से तो उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जो गर्भ के अंदर गर्भाशय में असहाय पड़ा है उसको एक माता निर्णय लेती है, पिता निर्णय लेता है कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसको बाहर फेंका जाता है, और आगे की ज़िंदगी जीने के लिए माता पिता मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हम बहादुरी का कार्य कर रहे हैं, क्या हम बुद्धि का कार्य कर रहे हैं, क्या हम बहुत बड़ी तकनीकी प्रगति कर चुके हैं इसलिए आगे की तकनीकी प्रगति का अनुभव कर रहे हैं। ये सब झूठ है, ये सब ढोंग है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें समझना चाहिए कि केवल मनुष्य के जीवन में ही श्रेष्ठ प्राप्ति भगवान की प्राप्ति करने का अवसर मिलता है। कुत्ते बिल्लियों की ज़िंदगी में भगवान की प्राप्ति करने का कोई योजना नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है कुत्ते बिल्लियों के दिमाग में और शरीर में। केवल ये सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग मनुष्य के शरीर में रखा गया है, जिसके द्वारा आप जीवन के उच्च उद्देश्यों को, इस जीवन का आनंद लेते हुए समझ सकते हो और अंत में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा होते हुए भी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुविधा चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप सोचिए, प्रकृति के नियम इतने सुंदर हैं कि प्रकृति में केवल मनुष्य के अलावा और कोई भी जीव अबॉर्शन नहीं करता है। आपने कभी सोचा इसके बारे में? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जिराफ, गाय, बैल, कीटक, मच्छर, हाँ कोई भी जीव देखिए आप, 84 लाख योनि में से 80 लाख योनियाँ तो अन्य जीवों की है मनुष्य को छोड़कर, और एक भी जीव कभी भी निसर्ग के नियम को तोड़ता नहीं है। और निसर्ग के नियम के द्वारा जब उसको बालक होता है तो कोई भी जीव के पास ऐसी योजना नहीं है कि वो गर्भपात करता है। केवल मनुष्य ऐसा है जो स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के आधार पर गर्भपात करने का सोचता है। इसीलिए मनुष्य को ही केवल कर्मों का फल का कायदा लगाया गया है, इसलिए मनुष्य ही केवल बुरे कर्म करने के बाद नरक पहुंचता है। कोई भी जानवर और कोई भी निचली योनि का जीव किसी भी कर्म को करने के बाद नरक नहीं पहुंचता है, उसकी मनुष्य के जीवन की ओर प्रगति होती है। लेकिन मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद जो कोई ऐसे जघन्य कार्य करता है उसके नरक में रवाना होता है भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए। इसलिए भक्तिवेदांत अस्पताल में हम किसी भी प्रकार का गर्भपात नहीं करते हैं, सिवाय अगर माया माता का जीवन संकट में है तो बहुत ही विचार परामर्श के बाद में उसका निर्णय लेते हैं। लेकिन आज तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस नहीं आया है। 0.001% माता के जीवन में संकट होता है गर्भ के होने से, बाकी सारे गर्भपात जो है वो स्वार्थ के लिए होते हैं। इसलिए भक्ति वेदांत में ना कोई सलाह दी जाती है गर्भपात की, ना कोई गर्भपात यहाँ पर होता है, केवल जीवन को बचाने के लिए व्यवस्था हमारे पास है। तो आइए हम सब मिलकर इस विचार को दृढ़ करें कि जो हमारे मनुष्य के गर्भ में जीव प्रवेश करता है उसे भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलने के लिए जीवन प्रदान करें, उस जीवन प्रदान करने के बाद उसको मार्गदर्शन मिले, सत्संग मिले और भगवान की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।